ये 84 कारिका को जो है हम पढ़ेंगे। इसमें ये जिज्ञासा होती है कि घट शब्द का जब हम श्रवण करते हैं तो घट शब्द श्रवण के बाद पश्चात स्फोट जो है वह ज्ञात हो जाता है। तो इसी तरह से तब जब ज्ञात स्फोट हो जाता है तो फिर उस स्फोट के ज्ञान कराने के लिए ध्वनि को स्वीकार करने की क्या जरूरत है। हमने घट शब्द को सुना और हमें घट स्फोट का जो है प्रत्यक्ष हो गया, इस बीच में ध्वनि की क्या जरूरत है। इस पर जो है 84वीं कारिका में बताया गया कि प्रत्यय अनुपाख्येय ग्रहणानुगुणैस् तथा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम अवधार्यते। इसमें जो दूसरी लाइन है इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ध्वनि प्रकाशिते शब्दे, ध्वनि के द्वारा जो प्रकाशित शब्द है, यहाँ शब्द कौन सा, स्फोट शब्द, स्फोटात्मक शब्द। तो ध्वनि के द्वारा जो प्रकाशित स्फोटात्मक शब्द है उसी शब्द में स्वरूपम अवधार्यते, माने शब्द स्वरूपम, शब्द अवधार्यते, शब्द स्वरूप का अवधारण होता है। तात्पर्य ये है कि ध्वनि ही जो है स्फोट को प्रकाशित करता है उस, और उस प्रकाशित होने वाले शब्द में तब जा कर के जो है शब्द के स्वरूप का अवधारण होता है, माने निश्चय होता है। अगर ध्वनि शब्द को प्रकाशित न करे तो उसमें शब्द के स्वरूप का अवधारण नहीं हो पाएगा। ये दूसरी पंक्ति का तात्पर्य है, ध्वनि प्रकाशते शब्दे स्वरूपम अवधार्यते, ध्वनि के द्वारा प्रकाशित जो शब्द उसी शब्द में स्वरूप का अवधारण होता है, माने उसी शब्द में शब्दत्व का निश्चय होता है, अन्यथा शब्द का निश्चय नहीं होता। अब यहाँ पर जो है ये जो ध्वनि है उस ध्वनि के लिए तीन विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है। एक है ग्रहणानुगुणैः, एक है अनुपाख्येयैः, और तीसरा है प्रत्ययैः। क्या क्या है, ग्रहणानुगुणैः, अनुपाख्येयैः, प्रत्ययैः, माने ग्रहणानुगुण ध्वनि से, अनुपाख्येय ध्वनि से, प्रत्यय ध्वनि से शब्द जो है वह प्रकाशित होता। अब इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। ग्रहणानुगुणैः जो है उसका अर्थ हुआ कि व्यक्त स्फोट स्वरूप ज्ञानोपायः, ग्रहणानुगुणैः मतलब व्यक्त स्फोट स्वरूप ज्ञानोपायः, माने स्फोट जो है ना वह दो स्थिति होती है, व्यक्त स्फोट और अव्यक्त स्फोट। व्यक्त स्फोट की स्थिति वह है जिसमें स्फोट अभिव्यक्त हो जाता है, स्फोट प्रकाशित हो जाता है, और अव्यक्त स्फोट की स्थिति क्या है, जिसमें स्फोट रहता तो है लेकिन वह प्रकाशित नहीं रहता है। तो यहाँ व्यक्त स्फोट का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में जो उपाय है उसी को कहते हैं ग्रहणानुगुणैः, माने व्यक्त स्फोट ग्रहण उपायः, अथवा व्यक्त स्फोट स्वरूप ज्ञानोपायः, व्यक्त स्फोट स्वरूप के ज्ञान में जो उपाय है, ये अर्थ हुआ ग्रहणानुगुणैः का। वह उपाय कौन है, तो ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि ही स्फोट को व्यक्त करता है। तो स्फोट व्यक्त स्वरूप ज्ञान का जो उपाय है ऐसी जो ध्वनि, ये कहना है ग्रहणानुगुणैः। दूसरा है अनुपाख्येय, अनुपाख्येयैः, उपाख्येय और अनुपाख्येय। उपाख्येय मतलब होता है व्यवहार योग्य, और अनुपाख्येय का मतलब होता है व्यवहार के अयोग्य। तो ये जो ध्वनि है यह मतलब शब्द का व्यंजक है, यह शब्द नहीं है, यह शब्द के रूप में अनुपाख्येय है, माने शब्द के रूप में अवाच्य है, शब्द के रूप में अव्यवहार्य है, अव्यवहारणीय है। माने ध्वनि जो है वह व्यक्त शब्द नहीं है बल्कि वह व्यंजक है, शब्द का व्यंजक है। इसलिए कहा कि ध्वनि अनुपाख्येय होती है, अर्थात व्यक्त स्फोट के रूप में वह व्यवहार के योग्य नहीं होती है। तीसरा बताया प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब हो गया ज्ञान। यहाँ पर किस ज्ञान की बात हो रही है, तो वर्ण ज्ञान, पदक ज्ञान, वाक्य ज्ञान, ये जो है ज्ञान, यही है यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ। तो वर्ण वर्ण ज्ञान, पदक ज्ञान और वाक्य ज्ञान। वर्ण ज्ञान होगा तो वर्ण स्फोट मत प्रकाशित होगा, पदक ज्ञान से जो है ना क्या प्रकाशित होगा, पदस्फुट प्रकाशित होगा, और वाक्य ज्ञान से क्या होगा तो वाक्य स्फुट प्रकाशित होगा। इस तरह से ये जो ध्वनि है ध्वनि का जो प्रत्यय है वर्णात्मक प्रत्यय अथवा पदात्मक प्रत्यय अथवा वाक्यात्मक प्रत्यय, उससे जो है स्फोट प्रकाशित होता है। कौन सा स्फोट? वर्ण स्फोट, पदस्फोट और वाक्य स्फोट। और इस उपाय के द्वारा जब शब्द प्रकाशित होता है तभी शब्द में शब्दत्व का निश्चय होता है, तभी अयम शब्दः इस तरह का निर्धारण किया जाता है। तो बिना तो ये जो पहले जिज्ञासा की गई थी, संदेह किया गया था कि घट शब्द का श्रवण हुआ और घट स्फोट जो है ना वह उसका घट स्फोट का ज्ञान हो गया तो इसमें ध्वनि मानने की क्या जरूरत है। तो यही जरूरत है कि जब तक वह ध्वनि के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा तब तक उस स्फोट का ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्वनि जो है वह ग्रहणानुगुण है, ध्वनि जो है वह अनुपाख्य है, ध्वनि जो है वह प्रत्यय है। अर्थात व्यक्त स्फोट के ग्रहण में ध्वनि उपाय होती है, ध्वनि जो है अनुपाख्य है, मन ध्वनि व्यक्त शब्द के रूप में जो है व्यवहार के अयोग्य है, वह ध्वनि व्यंजक है, वह व्यंग्य नहीं है। और ध्वनि जो है वह प्रत्यय है, अर्थात ध्वनि से जो है वर्ण का ज्ञान होता है, पद का ज्ञान होता है, वाक्य का ज्ञान होता है। ध्वनि स्वयं अपने आप में वर्ण स्फोट नहीं है, पदस्फोट नहीं है, वाक्य स्फोट नहीं है। इस तरह से 84वीं कारिका का विवेचन करने के उपरांत अब हम 85 संख्या की कारिका को पढ़ेंगे। नादैराहित बीजायाम अंत्येन ध्वनिना सह आवृत्त परिपाकायाम बुद्धौ शब्दोपधार्यते। अब ये जो प्रोसेस है कि ध्वनि का श्रवण होता है और ध्वनि के श्रवण के होने के बाद ध्वनि के द्वारा स्फोट अभिव्यक्त होता है, उस स्फोट का बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण होता है, इसके प्रोसेस को बता रहे हैं, इसका क्रम बता रहे हैं कि कैसे कब क्या होता है। कहते हैं कि नादेह आहित बीजायाम, यहाँ जो नादेह है इसका अर्थ करेंगे ध्वनि। तो किस तरह की ध्वनि? पूर्व पर ध्वनि, क्रमिक ध्वनि। अब जैसे मान लीजिए घटह पटह कहते हैं तो घटह में पहले घकार ध्वनि है, उसके बाद घकार उत्तरवर्ती अकार ध्वनि है, फिर उसके उत्तरवर्ती टकार ध्वनि है, फिर उसके उत्तरवर्ती टकार का अकार ध्वनि है। ये जो क्रमिक ध्वनि है यही यहाँ पर नाद शब्द से अभिप्रेत है। तो नादेह माने पूर्व पर ध्वनि भी अथवा क्रमिक ध्वनि भी। आहित बीजायाम, ये आहित बीजायाम जो है ना ये बुद्धों का विशेषण है, आगे है ना बुद्धो शब्द अवधार्यते, माने बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है। अवधारण होता है माने निर्धारण होता है, निश्चय होता है। तो बुद्धि में शब्द का कब निश्चय होता है, बुद्धि में स्फोट का कब निश्चय होता है, कब बुद्धि में ये होता है कि अयम स्फोट, इस तरह का जो अवधारण है ये कब होता है, तो उसके लिए बताते हैं कि नादेह आहित बीजायाम, नाद के द्वारा पूर्व पर ध्वनियों के द्वारा मतलब बुद्धि में बीज का जो है ना आधान किया जाता है। यहाँ पर बीज का अर्थ करना है कि प्रकाश के अनुरूप जो संस्कार होता है वही संस्कार यहाँ पर बीज का अर्थ है। आहित मतलब जिस संस्कार को जिस संस्कार का आधान किया गया हो, जिस संस्कार को उस बुद्धि में उत्पन्न कराया गया हो, ऐसा जो संस्कार है उसको हम आहित बीज कहेंगे। तो ध्वनियों के द्वारा क्या होता है कि बुद्धि में बीज का आधान होता है, अर्थात संस्कार का आधान होता है। किस तरह के संस्कार का आधान होता है? तो प्रकाशक संस्कार का आधान होता है। फिर से समझ लीजिए, नादेह आहित बीजायाम बुद्धौ, माने बुद्धि में नाद के द्वारा क्रमिक ध्वनि के द्वारा बीज का आधान किया जाता है, अर्थात प्रकाशक संस्कार को का आधान किया जाता है, प्रकाशक संस्कार को का स्थापन किया जाता है। अंत्येन ध्वनिनाशः, और ये कैसे होता है? तो अंतिम ध्वनि तक जो है ना वह संस्कार होता रहता है, अब जैसे रामायण कहते हैं तो र से जो है ना थोड़ा संस्कार हुआ, फिर रा में जो आ है उसके द्वारा फिर थोड़ा संस्कार हुआ, फिर मा य न इस तरह से क्रमिक जो है ध्वनियों के द्वारा संस्कार होता रहा, संस्कार होता रहा, संस्कार होता रहा। अंतिम ध्वनि जो है रामायण में न का जो अ है वह अंतिम ध्वनि है। जब अंतिम ध्वनि के साथ जब ध्वनि से जब संस्कार हो जाता है बुद्धि का, तो आवृत्त परिपाकायाम बुद्धो, वह जो बुद्धि है वह आवृत्त परिपाक बुद्धि हो जाती है। आवृत्त परिपाक बुद्धि का मतलब, आवृत्त मतलब पुनः पुनः कृतः, बार बार। अब जैसे रामायण में 8 अक्षर हैं तो एक अक्षर के द्वारा थोड़ा सा जो है संस्कार हुआ, दूसरे से थोड़ा सा हुआ, तीसरे से थोड़ा हुआ, माने बारंबार जो है ना वह संस्कार होता चला गया, होता चला गया, और अंतिम ध्वनि से जब संस्कार हुआ तब जाकर की वो बुद्धि जो है वह आवृत्त परिपाका बुद्धि कहलाती है। माने बारंबार जो है उसका में परिपाक जब होता है, परिपाक मतलब प्रत्यक्ष करण योग्यता, प्रत्यक्ष करने की जो योग्यता है, माने शब्द को प्रत्यक्ष करने की योग्यता, शब्द प्रत्यक्ष का मतलब शब्द का ज्ञान, तो शब्द के का जो ज्ञान होगा बुद्धि में उसके लिए जो योग्यता चाहिए, उसके लिए जो एबिलिटी चाहिए, वो एबिलिटी उस बुद्धि में उत्पन्न होती है, और एबिलिटी उत्पन्न होने के बाद उस बुद्धि में स्फुट शब्द का अवधारण होता है। ये जो है 85वीं कारिका की व्याख्या हुई। फिर हम 86वीं कारिका को देखेंगे। इसमें ये प्रश्न उठता है कि वास्तविक जो स्फोट है वह अखंड है, उसमें कुछ होता नहीं। आपने पहले पढ़ा है पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेशु अवयवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। तो स्फोट जो है वह अखंड है, तो अखंड स्फोट जो है फिर उसमें वर्ण का जो अवभास होता है, पद का जो अवभास होता है, ये सब अवभास जो है असंगत है। जब सखंड अगर हो तब तो उसमें जो है वर्ण पद आदि का जो है अवभास होना चाहिए, लेकिन जब स्फोट अखंड है तो उसमें वर्ण और पद का जो है अवभास क्यों होता है, कैसे होता है, इसका प्रश्न का उत्तर इसमें बताया गया कि असतश्च अंतराले यान शब्दान अस्तीति मन्यते प्रतिपत्तुः असक्ति ही सा ग्रहणोपाय एव सः। ताकि ये जो मतलब सब ध्वनि सुनते हैं और स्फोट की जो प्रतिपत्ति होती है, स्फोट का जो ज्ञान होता है, स्फोट का जो अवधारण होता है, उस बीच में उस मध्य में उसी को कहा अंतराले, अंतराले माने मध्य। तो ध्वनि श्रवण और स्फोट का अवधारण, इसके अंतराल में, इसके मध्य में असतः यान शब्दान, जो असत शब्द है, असत शब्द है मतलब वर्णात् वर्ण पद और वाक्य, इस तरह का जो असत शब्द है, असत मतलब जिस अस्तित्व रहित, वास्तविक अस्तित्व रहित है, तो वास्तविक अस्तित्व रहित जो शब्द है, इस तरह अस्ति इति मन्यते, माने स्फोट में वर्ण होता है, स्फोट में पद होता है, स्फोट में वाक्य होता है, इस तरह से जो मानने वाले हैं अस्ति इति मन्यते, असत शब्द है, इस तरह से जो मान, इस तरह की मान्यता वाले जो व्यक्ति हैं, इस तरह मानने वाले जो आचार्य हैं, या इस तरह से मानने वाले जो बुद्धा हैं, वह उस बुद्धा के लिए कहा गया कि प्रतिपत्तुः असक्ति सा, यह जो है उस प्रतिपत्ता की, प्रतिपत्ता माने बुद्धा ज्ञाता, उस ज्ञाता की यह असक्ति है कि वह यह मन मान बैठता वह यह मान बैठता है कि स्फोट में वर्ण है, स्फोट में पद है, स्फोट में वाक्य है, स्फोट में ध्वनि है, स्फोट में मात्रा है, स्फोट में ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, स्फोट में जो है द्रुत मध्य विलंबित वृत्ति है, स्फोट में उदात अनुदात स्वरित है, इस तरह से जो चीजें जो मानने वाली बातें हैं वह वास्तव में बुद्धा की असक्ति है, माने बुद्धा का असामर्थ्य है। वस्तुतः यह स्फोट में ये सब कुछ नहीं होता, स्फोट का तो ये उपाय मात्र है कि वर्ण पद वाक्य के द्वारा उस अखंड स्फोट की प्रतिपत्ति होती है, उस अखंड स्फोट में ये उपाय हैं, ये वस्तुतः होते नहीं है। जो मतलब अच्छा ज्ञाता है, जो अच्छा बुद्धा है, वह इस बात को समझता है कि ये जो वर्ण पद आदि हैं ये व्यंजक है, उसके द्वारा जो व्यंग स्फोट है वह व्यंग स्फोट तो निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं होता, वह शुद्ध है, वह अखंड है। इस तरह से स्फोट निरवयव शुद्ध अखंड, इस तरह से जो विवेचन शक्ति है ध्वनि से स्फोट को अलग करने की जो शक्ति है, इस शक्ति का अभाव जिस व्यक्ति में रहता है वही कहता है कि स्फोट में वर्ण होता है, पद होता है। जिसमें ये विवेचन की शक्ति रहती है, विवेचन शक्ति कौन सी कि वर्ण पदम वा व्यंजकम और स्फोट निरवयव शुद्ध अखंड, इस तरह से विवेचन शक्ति जिसके पास है वह समझता है कि वास्तविक में ये वर्ण पद सब बेकार है, ये तो केवल उपाय हैं, ये केवल व्यंजक हैं, ये बोधक हैं, ये बोध्य नहीं हैं। तो जिन ये जो सवाल था कि स्फोट जब अखंड होता है तो वर्ण पद का अवभास कैसे होता है, तो उसके लिए बताया कि ये अशक्ति वाले व्यक्तियों के लिए है। जिसके पास विवेचना शक्ति नहीं है वही ये समझता है कि स्फोट में वर्ण पद आदि होते हैं, जिसमें विवेचना की शक्ति है उसके लिए ये नहीं है। तात्पर्य ये निकला कि वर्ण पद की जो प्रतीति होती है वह अवास्तविक है, और वर्ण पद की प्रतीति नहीं होना, केवल स्फोट को जो है ना शुद्ध मानना, अखंड मानना, ये ही जो है यही वास्तविक है। इस तरह से हमने 86 संख्या की कारिका को भी पढ़ा, आगे फिर हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज यही स्थगित करते हैं।